इस लेख का अध्ययन 16 से 22 मार्च के दौरान किया जाएगा। विषय, हमें फिरौती की जरूरत क्यों है। ये लेख रोमियो 7 के 24 पर आधारित है, जहां लिखा है, मुझे इस शरीर से जो मर रहा है कौन छुड़ाएगा। गीत 20, तूने अपना अनमोल बेटा दिया। क्या सीखेंगे? फिरौती बलिदान की वजह से हमें कैसे गलतियों की माफी मिलती है, पापी हालत से छुटकारा मिलता है और परमेश्वर के साथ सुलह हो पाती है। पैराग्राफ 1 और 2। सवाल, हमें किससे छुड़ाए जाने की जरूरत है और क्यों। कल्पना कीजिए, एक ऊंची इमारत ढह गई है, एक आदमी उसके मलबे के नीचे दबा हुआ है। उसकी सांसें तो चल रही है, लेकिन वो अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा। वो जैसे तैसे मदद की पुकार लगाता है और ये उम्मीद करता है कि कोई आकर उसे बचाएगा। देखा जाए तो हम सभी ऐसी ही हालत में हैं। जब आदम ने परमेश्वर से बगावत की तो वो पापी बन गया। आगे चलकर यही पाप उसके बच्चों को विरासत में मिला। इस वजह से सभी इंसान विरासत में मिले पाप तले दबे हुए हैं और हम चाहे कितना ही हाथ पैर मार लें, हम खुद को छुड़ा नहीं सकते। पौलुस ने रोम की मंडली को लिखी अपनी चिट्ठी में इसी हालत के बारे में बताया। रोमियो 7 के 22 से 24 में लिखा है, मेरे अंदर का इंसान वाकई परमेश्वर के कानून से खुशी पाता है, मगर मैं अपने शरीर में दूसरे कानून को काम करता हुआ पाता हूं, जो मेरे सोच विचार पर राज करने वाले कानून से लड़ता है और मुझे पाप के उस कानून का गुलाम बना लेता है जो मेरे शरीर में है। मैं कैसा लाचार इंसान हूं, मुझे इस शरीर से जो मर रहा है कौन छुड़ाएगा। उसने कहा, मुझे इस शरीर से जो मर रहा है कौन छुड़ाएगा। पौलुस जानता था कि विरासत में मिले पाप का अंजाम मौत है। आज हम भी इस बोझ के नीचे दबे हुए हैं और लाचार और बेबस हैं। पैराग्राफ 1 और 2 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि एक इमारत ढह गई है और एक आदमी उसके मलबे के नीचे दबा हुआ है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मदद मांग रहा है। चित्र शीर्षक, मलबे के नीचे दबे हुए आदमी की तरह हम भी विरासत में मिले पाप तले दबे हुए हैं और हमें छुड़ाए जाने की जरूरत है। पैराग्राफ 3। सवाल, फिरौती बलिदान की वजह से क्या मुमकिन हो पा रहा है। पौलुस ने अपनी बात वहीं खत्म नहीं की, उसके पास एक उम्मीद थी। ये कहने के बाद कि मुझे इस शरीर से जो मर रहा है कौन छुड़ाएगा, उसने अपने ही सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियो 7:25। पौलुस यीशु के फिरौती बलिदान की बात कर रहा था। फुटनोट, इसका क्या मतलब है। कैद से आजाद होने के लिए दी जाने वाली कीमत को फिरौती कहते हैं। सबसे बड़ी फिरौती मसीह ने दी। उसने आज्ञा मानने वाले इंसानों को पाप और मौत से छुड़ाने के लिए अपनी जान दे दी। फुटनोट समाप्त। इस फिरौती की वजह से हमें 1, अपनी गलतियों की माफी मिलती है, 2, पापी हालत से छुटकारा मिलता है और 3, परमेश्वर के साथ हमारी सुलह हो पाती है। इस लेख में हम इन 3 बातों पर चर्चा करेंगे। इससे आशा देने वाले हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए हमारे दिल में प्यार बढ़ जाएगा। हम यीशु के भी और ज्यादा एहसानमंद होंगे, जिसने फिरौती देकर हमें छुड़ाया है। कुलुसियों 1:14। गलतियों की माफी। पैराग्राफ 4 और 5। सवाल, हम सभी को फिरौती की जरूरत क्यों है। हम सब अपरिपूर्ण हैं और अपनी बोली और कामों में गलतियां कर बैठते हैं। सुबोपदेशक 7:20 में लिखा है, धरती पर ऐसा कोई नेक इंसान नहीं जो हमेशा अच्छे काम करता है और कभी पाप नहीं करता। इन गलतियों और पापों की माफी पाने के लिए हमें फिरौती की जरूरत है। कुछ पाप गंभीर होते हैं, जैसे व्यभिचार या किसी का खून करना। मूसा के कानून के मुताबिक ये बहुत गंभीर पाप थे और ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाती थी। कुछ पाप उतने गंभीर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हैं तो पाप ही। दाविद ने भी ऐसे ही एक पाप के बारे में कहा, मैं बहुत सावधानी बरतूंगा ताकि अपनी जीभ से पाप न कर बैठूं। भजन 39:1। इसका मतलब हम बोलने में भी पाप कर सकते हैं। जरा सोचिए, आपने बीते वक्त में क्या कुछ कहा और किया है? क्या आपने कभी दूसरों को कुछ ऐसा कहा है जिसका बाद में आपको बहुत अफसोस हुआ? क्या आपने ऐसी कुछ गलतियां की हैं जिनका आपको अभी भी दुख है? हम सब ने ऐसा कुछ कहा या किया होगा। बाइबल बताती है, अगर हम कहें हमारे अंदर पाप नहीं है तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं और सच्चाई हमारे अंदर नहीं है। 1 यूहन्ना 1:8। पैराग्राफ 6 और 7। सवाल, यहोवा किस आधार पर हमारे पाप माफ करता है? जब हम कोई पाप करते हैं तो यहोवा हमें माफ कर सकता है और वो ऐसा करना भी चाहता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो यूं ही हमारे पाप माफ कर देगा और हमने जो किया उसे नजरअंदाज कर देगा। पाप करना यहोवा की नजर में एक गंभीर बात है। यहोवा न्याय का परमेश्वर है, वो जो भी करता है उसका एक आधार होता है। हमारे पाप माफ करने के लिए भी उसे एक आधार चाहिए और वो है फिरौती बलिदान। मूसा के कानून के मुताबिक इसराइली अपने पापों की माफी पाने के लिए जानवरों का बलिदान चढ़ाते थे। ये बलिदान एक बेहतर इंतजाम की छाया थे। वो इंतजाम है यीशु का फिरौती बलिदान, जिससे इंसानों को बहुत सी आशीषें मिलती। ये बलिदान यहोवा को हमारे पाप माफ करने का एक कानूनी आधार देता। पौलुस ने कुरिन्थ के मसीहों को लिखते वक्त इस बलिदान की अहमियत बताई। पहले उसने ये बताया कि बीते समय में वो लोग किन कामों में लगे हुए थे, पर फिर उसने कहा, मगर तुम्हें धोकर शुद्ध किया गया, पवित्र ठहराया गया और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की पवित्र शक्ति से नेक ठहराया गया है। 1 कुरिन्थियों 6:9-11। पैराग्राफ 6 और 7 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि एक इसराइली परिवार खुशी खुशी मंदिर में याजक को एक भेड़ दे रहा है। चित्र शीर्षक, इसराइली अपने पापों की माफी पाने के लिए जानवरों का बलिदान चढ़ाते थे। ये बलिदान यीशु के फिरौती बलिदान की छाया थे, जिससे इंसानों को बहुत सी आशीषें मिलती। पैराग्राफ 8। सवाल, इस साल स्मारक से पहले आप किस बारे में सोच सकते हैं? इस साल के स्मारक की तैयारी करते वक्त थोड़ा समय निकालकर सोचिए कि यहोवा इंसानों की गलतियां माफ करता है, ये बात कितनी मायने रखती है। जैसे फिरौती बलिदान की वजह से हम अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोच सोचकर दोषी महसूस नहीं करते, लेकिन हो सकता है बहुत कोशिश करने पर भी आप मान नहीं पा रहे कि आपको अपने पापों की माफी मिल गई है। शायद आप सोचते हो, मैं जानता हूं कि यहोवा हमारे पाप माफ कर सकता है, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। ऐसे में ये याद रखिए, यहोवा तय करता है कि किसे माफ करना है और किसे नहीं, और उसने अपने बेटे को इंसानों का न्याय करने का अधिकार दिया है। यहोवा ने आपको या किसी और इंसान को यह तय करने का अधिकार नहीं दिया है कि किस पर दया की जाएगी और किससे माफी मिलेगी। बाइबल में भी लिखा है, अगर हम रोशनी में चल रहे हैं जैसा यहोवा खुद भी रोशनी में है, तो उसके बेटे यीशु का खून हमारे सभी पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:6-7। हम इस बात पर उतना ही यकीन रख सकते हैं जितना हम बाइबल की किसी दूसरी शिक्षा पर रखते हैं। फिरौती बलिदान से यहोवा को हम इंसानों पर दया करने का एक कानूनी अधिकार मिल गया है। यही नहीं, उसके वचन में लिखा है कि वो हमें माफ करने को तत्पर भी है। भजन 86:5। पापी हालत से छुटकारा। पैराग्राफ 9। सवाल, पाप का क्या मतलब है? बाइबल में जब भी पाप का जिक्र हुआ है तो हर जगह इसका मतलब कोई गलत काम करना नहीं है। कई बार ये हमारी अपरिपूर्ण या पापी हालत को बताने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो पैदाइशी है। भजन 51:5 में लिखा है, देख मैं जन्म से ही पाप का दोषी हूं, जब मैं मां के गर्भ में पड़ा तब से मुझ में पाप है। फुटनोट, या पाप में मेरी मां ने मुझे गर्भ में धारण किया था। इस हालत की वजह से ना सिर्फ हमारा झुकाव कुछ गलत करने की तरफ होता है, बल्कि इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसी पैदाइशी हालत की वजह से छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है बीमार हो जाते हैं और कभी कभी तो उनकी मौत भी हो जाती है। देखा जाए तो ऐसी हालत की वजह से हर एक इंसान, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक ना एक दिन मर जाता है। पैराग्राफ 10। सवाल, पाप करने के बाद आदम और हवा के साथ क्या हुआ? जब आदम और हवा ने पाप किया और वो अपरिपूर्ण हो गए तो उनकी जिंदगी पूरी तरह उलट पुलट हो गई। परमेश्वर का कानून उनके दिलों में लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ा, उसके अंजाम तुरंत सामने आ गए। रोमियो 2:15। उन्हें एहसास हो गया कि अब सब कुछ बदल गया है, वो पहले जैसे नहीं रहे। वो अपने शरीर को ढकने की कोशिश करने लगे, परमेश्वर से छिपने लगे, मानो कोई मुजरिम हो। पहली बार आदम और हवा ने दोषी महसूस किया। उन्हें चिंता और बेचैनी होने लगी और वो बहुत दुखी और शर्मिंदा हुए। अब से हर पल कहीं ना कहीं ये भावनाएं उन्हें सताती रहती। पैराग्राफ 11। सवाल, पाप का इंसानों पर क्या असर हुआ है? आदम और हवा की संतान होने की वजह से हम पैदाइश से पापी हैं। इस वजह से गलतियां करने पर हम भी दोषी और शर्मिंदा महसूस करते हैं। असल में हमारी जिंदगी के हर दुख दर्द की जड़ यही पापी हालत है। जब तक हम पापी रहेंगे, तब तक हम में से हर एक चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम अपनी मुश्किलों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। बाइबल में भी लिखा है कि सृष्टि व्यर्थता के अधीन की गई है। रोमियो 8:20। जरा सोचिए, इंसान ने धरती के पर्यावरण को सुधारने के लिए, अपराध रोकने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए और दुनिया में शांति लाने के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा है। इंसान की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। लेकिन फिरौती से हमें कैसे इस पापी हालत से छुटकारा मिल सकता है? पैराग्राफ 12। सवाल, फिरौती बलिदान से हमें क्या आशा मिलती है? फिरौती बलिदान की वजह से हमारे पास ये आशा है कि सृष्टि भ्रष्टता की गुलामी से आजादी पाएगी। रोमियो 8:21। नई दुनिया में हम फिरौती बलिदान से मिलने वाले सभी फायदे देख पाएंगे। हमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई चिंता परेशानी नहीं सताएगी और ना ही हम कभी दोषी, शर्मिंदा, बेचैन या दुखी महसूस करेंगे। धरती पर एक खूबसूरत माहौल होगा और हर कहीं शांति होगी। आखिर इंसानों पर शांति का शासक यीशु मसीह राज कर रहा होगा, जिसने खुद हमारी फिरौती की कीमत अदा की। यशाया 9:6-7। पैराग्राफ 13। सवाल, इस स्थल स्मारक से पहले आप और किस बारे में सोच सकते हैं? जरा सोचिए, नई दुनिया में जब आपको इस पापी हालत से छुटकारा मिल जाएगा तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? हर दिन जब आप सुबह जागेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपको ये चिंता नहीं सताएगी कि कहीं आपको या आपके बच्चों को भूखे पेट ना सोना पड़े, कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं या आपकी मौत ना हो जाए। यही नहीं, भविष्य के लिए अपनी आशा के बारे में सोचने से आज भी आपको शांति मिल सकती है। ये आशा हमारी जिंदगी के लिए एक लंगर है जो पक्की और मजबूत है। इब्रानियों 6:18-19। जिस तरह एक लंगर तूफान में नाव को संभाले रहता है, उसी तरह अपनी आशा के बारे में सोचने से आप मुश्किलों में खुद को संभाल पाएंगे, धीरज धर पाएंगे और अपना विश्वास और मजबूत कर पाएंगे। यकीन रखिए, यहोवा उन लोगों को इनाम देता है जो पूरी लगन से उसकी खोज करते हैं। इब्रानियों 11:6। भविष्य के लिए आपके पास जो आशा है और इससे आज आपको जो दिलासा मिल रहा है, वो फिरौती की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। परमेश्वर के साथ सुलह। पैराग्राफ 14। सवाल, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो क्या हुआ और क्यों? जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो वो दोनों और आगे चलकर सभी इंसान परमेश्वर से दूर हो गए। बाइबल में तो यहां तक बताया है कि इंसान परमेश्वर के दुश्मन बन गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहोवा के स्तर बहुत ऊंचे हैं और वो पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बाइबल में यहोवा के बारे में लिखा है, तेरी आंखें इतनी शुद्ध हैं कि तू बुराई नहीं देख सकता, दुष्टता तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हबक्कूक 1:13। इसलिए आदम और हवा के पाप करने की वजह से यहोवा और इंसानों के रिश्ते में दरार आ गई। अब दोबारा यहोवा के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए जरूरी था कि इस दरार को भरा जाए ताकि परमेश्वर के साथ सुलह हो। फिरौती बलिदान की वजह से ही हमारी उसके साथ सुलह हो पाई। पैराग्राफ 15। सवाल, फिरौती बलिदान से यहोवा क्यों खुश हुआ और इससे क्या हो पाया? बाइबल में बताया है कि यीशु हमारे पापों के लिए ऐसा बलिदान है जो परमेश्वर के साथ हमारी सुलह कराता है। 1 यूहन्ना 2:2। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद जो परमेश्वर के साथ हमारी सुलह कराता है किया गया है, उसका मतलब जो परमेश्वर को खुश करता है भी हो सकता है। पर यीशु के फिरौती बलिदान से यहोवा कैसे खुश हुआ? ऐसा नहीं है कि उसे अपने बेटे की मौत से खुशी हुई। इसके बजाय फिरौती बलिदान की वजह से यहोवा को इंसानों के साथ दोबारा रिश्ता कायम करने का आधार मिल गया। इस मायने में यीशु के बलिदान से यहोवा खुश हुआ। दिलचस्पी की बात है कि उसने यीशु की मौत से पहले ही उसके फिरौती बलिदान के आधार पर अपने वफादार सेवकों को नेक ठहराया। वो इसलिए कि यहोवा को पूरा यकीन था कि आगे चलकर उसका बेटा फिरौती की कीमत अदा करेगा। पैराग्राफ 16। सवाल, इस साल स्मारक की तैयारी करते वक्त आप और किस बारे में सोच सकते हैं? फिरौती की वजह से यहोवा के साथ आपकी सुलह हो पाई है। सोचिए ये बात कितनी मायने रखती है। आप जरूर यहोवा को अपना पिता कहते होंगे, जैसे यीशु ने भी सिखाया था। शायद आप उसे अपना दोस्त भी कहते हों। हम हमेशा गहरी श्रद्धा और आदर से ऐसा करना चाहेंगे, क्योंकि पापी होने की वजह से हम अपने दम पर कभी यहोवा के इतने करीब नहीं जा सकते थे। सिर्फ और सिर्फ यीशु की बदौलत हम यहोवा के साथ इतना अच्छा रिश्ता बना पाए हैं। यीशु के जरिए यहोवा ने अपने साथ बाकी सब चीजों की सुलह करवाई। परमेश्वर ने यह शांति उस खून के आधार पर कायम की जो मसीह ने यातना की काठ पर बहाया था। कुरुसियों 1:19-20। फिरौती बलिदान की वजह से ही अपरिपूर्ण होने के बावजूद हम यहोवा के साथ एक रिश्ता बना पाते हैं। पैराग्राफ 16 से जुड़ी तस्वीर में दिखाया गया है कि रोमी सैनिक यीशु को काठ पर लटकाने की तैयारी कर रहे हैं। दो रोमी सैनिक यीशु को काठ के पास ला रहे हैं और एक रोमी सैनिक ने हथौड़ा और कील पकड़ी हुई है। चित्र शीर्षक, फिरौती बलिदान की वजह से यहोवा को इंसानों के साथ दोबारा एक अच्छा रिश्ता बनाने का कानूनी आधार मिल गया। फिरौती यहोवा की दया का सबूत। पैराग्राफ 17। सवाल, फिरौती के इंतजाम से कैसे पता चलता है कि यहोवा दया करने वाला परमेश्वर है? फिरौती बलिदान इस बात का सबूत है कि यहोवा दया का धनी है। हम अपने गुनाहों की वजह से मरे हुए थे, लेकिन यहोवा ने हमें जिंदा किया। इफिसियों 2:4-5 में लिखा है, मगर परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने हमसे बहुत प्यार किया, इसलिए हमें जिंदा किया और मसीह के साथ एक किया जबकि हम अपने गुनाहों की वजह से मरे हुए थे। उसकी महाकृपा की वजह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। मलबे के नीचे दबे हुए उस आदमी की तरह आज ऐसे कई लोग हैं जो जानते हैं कि वो अपने दम पर अपनी मुश्किलें नहीं सुलझा सकते। यहोवा देख सकता है कि वो अच्छा मन रखते हैं। प्रेषितों 13:48। इसलिए वो उन तक राज का संदेश पहुंचाता है ताकि वो उसे और उसके बेटे यीशु को जान पाए। शैतान को लगा कि आदम और हवा के पाप करने की वजह से यहोवा का मकसद अधूरा रह जाएगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। पैराग्राफ 18। सवाल, फिरौती बलिदान के बारे में मनन करते वक्त हमें क्या बात याद रखनी चाहिए? ये सच है कि फिरौती बलिदान की वजह से हमें ढेरों आशीषें मिली हैं, और हमें उस बारे में मनन भी करना चाहिए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि फिरौती देने की इससे भी बड़ी वजह थी। यहोवा ने सिर्फ हमें उद्धार दिलाने के लिए यीशु की फिरौती नहीं दी, बल्कि अदन के बाग में शैतान ने जो मसला उठाया था उसे सुलझाने के लिए यहोवा ने इसका इंतजाम किया। इसके जरिए यहोवा अपना नाम पवित्र करेगा और उस पर लगे सभी इल्जामों को झूठा साबित करेगा। यहोवा हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए फिरौती के जरिए वो हमें पाप और मौत से भी छुड़ाएगा। यही नहीं, यहोवा ने हम इंसानों पर बहुत महाकृपा की है। हम पापी हैं, फिर भी उसने हमें शैतान के दावों को झूठा साबित करने का मौका दिया है। आप कैसे दिखा सकते हैं कि आप फिरौती बलिदान के लिए यहोवा का एहसान मानते हैं? अगले लेख में हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। फिरौती बलिदान की वजह से हमें कैसे अपनी गलतियों की माफी मिलती है, हमें कैसे पापी हालत से छुटकारा मिलता है, परमेश्वर के साथ हमारी सुलह कैसे हो पाती है। गीत 19, प्रभु का संध्या भोज। लेख समाप्त।